पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, विषय प्रवेश। पुरातत्व के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी ईस्वी के 70 एवं 80 के विगत दो दशकों में अत्यंत उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव की संपूर्ण कहानी को उसकी समग्रता में समझने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मात्र पुरावशेषों के अन्वेषण एवं प्राप्ति का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। मानव के समग्र इतिहास को पुरातत्व के माध्यम से समझने के लिए नवीन मुहावरों की खोज हो रही है, नवीन शब्दावली गढ़ी जा रही है। मानव संस्कृति के संदर्भ में प्रसार, डिफ्यूजन तथा आविष्कार, इन्वेंशन एवं परिवर्तन, चेंज की संबंध के में नए सिरे से समीक्षा हो रही है। पुराविदों ने अपेक्षाकृत इस थोड़े से समय में अपने अन्वेषण तथा अनुसंधान की पद्धतियों में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। सैद्धांतिक एवं वैचारिक क्षेत्रों में हुई प्रगति को अत्यंत सनसनीखेज कहा जा सकता है। भौतिकी तथा जैविकी की विकसित एवं परिष्कृत विश्लेषण विधियों को पुराविदों ने सफलतापूर्वक अपना लिया है। नृतत्व विज्ञान, भूगोल, जनसंख्या की तथा जनसांख्यिकी तथा आर्थिक इतिहास आदि मानविकी एवं समाज विज्ञान आदि विभिन्न विषयों की अध्ययन संबंधी उपयोगी विधियों को भी पुरातत्व ने आत्मसात कर लिया है। सांस्कृतिक परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रियाओं की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण के लिए सर्वथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यह सच है कि जनमानस में पुरातत्व के प्रति एक विशेष अभिरुचि और रुझान देखने को मिलता है, परंतु ऐसे लोग सामान्यतः पुरातत्व का संबंध विचित्र एवं आकर्षक प्राचीन वस्तुओं के संग्रह एवं जमीन के अंदर गड़े हुए खजानों आदि की खोज के लिए किए जाने वाले उत्खनन कार्यों इत्यादि से जोड़ते हैं। इस प्रकार आम तौर पर लोगों में पुरातत्व के रोमानी पक्ष के प्रति विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। पुरातत्व के विषय में ऐसी धारणा आंशिक रूप में भी सही नहीं है। तथ्य यह है कि पुरातत्व मानव अतीत के उन पक्षों को उजागर करने का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है, जिनके संबंध में लिखित साक्ष्यों में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस कार्य के लिए पुरातत्व को अत्यंत जटिल एवं परिष्कृत विधियों और प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। पृष्ठ संख्या दो, पुरातत्व की परिभाषा। पुरातत्व के विषय में विचार करते समय सबसे पहले उसकी परिभाषा के विषय में विचार करना आवश्यक है। पुरातत्व शब्द के एक से अधिक अर्थों में प्रयोग का प्रचलन रहा है और अभी भी है। इस प्रसंग में ग्लीन डेनियल के इस कथन का उद्धरण अप्रासंगिक नहीं होगा कि विज्ञान, मानविकी, कला आदि शब्दों को संबंध विषयों के विद्वानों ने ही स्वयं गढ़ा है। विभिन्न अध्येताओं द्वारा निर्मित, विकसित और परिमार्जित ज्ञान की ये विभिन्न शाखाएं इन उपर्युक्त शब्दों में से किसके अंतर्गत सम्मिलित की जाएं? इस प्रश्न का समाधान बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन शब्दों को आज किस प्रकार परिभाषित करते हैं और इसके पूर्व विगत अतीत में किस प्रकार परिभाषित किया है। हिंदी भाषा में पुरातत्व शब्द अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द से के पर्यायवाची के रूप में व्यवहृत होता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पुरातत्व से क्या आशय है, पुराविद किस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। पुराविदों के लिए पुरातत्व शब्द का एक निश्चित और विशिष्ट अर्थ है। हिंदी के इस पुरातत्व शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात करने के लिए अंग्रेजी में इस शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विचार कर लेना असंगत नहीं होगा। आर्कियोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के आर्कियोस तथा लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। लेकिन आजकल पुरातत्व शब्द का उसके शाब्दिक अर्थ से किंचित भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यूनान और रोम के अतीत के खोज के साथ पाश्चात्य जगत में पुरातत्व का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में यूरोप के विभिन्न देशों के जनमानस में प्राचीन यूनान और रोम की क्लासिकल कृतियों, पुरावशेषों, एंटीक्विटीज के अध्ययन तथा खोज की एक सहज जिज्ञासा एवं इच्छा उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय भावना ने आहुति में घी का काम किया। परिणाम स्वरूप देखते ही देखते प्राचीन यूनान और रोम की आकर्षक दर्शनीय कलाकृतियों एवं बहुमूल्य प्रतिनिधियों यूरोप के विभिन्न देशों के संग्रहालयों, की शोभा बढ़ाने लगी। इस प्रकार पश्चिमी जगत में पुरातत्व शब्द का प्रयोग आरंभ में यूनान और रोम के प्राचीन पुरावशेषों तथा पुरानिधियों के अर्थ में ही किया गया था। वस्तुतः संग्रहालयों के पुरावशेषों को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध पृष्ठ संख्या 3 ढंग से सजाने संवारने की प्रक्रिया से ही यूरोप में पुरातत्व का उद्भव एवं विकास हुआ। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, पुरातत्व का अर्थ उत्तरोत्तर व्यापक होता गया। पश्चिमी यूरोपीय देशों में यूनान और रोम के प्राचीन पुरावशेषों का अभाव था, इसलिए इन क्षेत्रों में पुरातत्व शब्द का प्रयोग प्राक रोमन पुरानिधियों के अर्थ में किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 19वीं शताब्दी में मिस्र तथा मेसोपोटामिया के क्षेत्र में निर्जन और वीरान टीलों के नीचे लंबे समय से दबी पड़ी सभ्यताओं को खोज निकाला गया। भारत एवं पाकिस्तान के क्षेत्रों में विस्तृत सैंधव हड़प्पा सभ्यता की खोज भी 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सर्वप्रथम हुई थी। इन समस्त क्षेत्रों के पुरावशेषों को भी पुरातत्व की परिधि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे पुरातत्व का तात्पर्य उन समस्त प्राचीन वस्तुओं से माना जाने लगा जिनका निर्माता एवं प्रयोक्ता मानव रहा हो। विभिन्न विद्वानों ने पुरातत्व को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। सुप्रसिद्ध पुराविद गार्डन चाइल्ड के अनुसार पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जा सकता है। पुरातत्व के एक अन्य पुरोधा ग्राहम क्लार्क के अनुसार पुरातत्व को मानव अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ग्लीन डेनियल के अनुसार पुरातत्व शब्द का प्रयोग 2 प्रमुख अर्थों में किया जा सकता है, 1 मानव अतीत के भौतिक अवशेषों के अध्ययन और 2 मानव के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरावशेषों के अध्ययन के अर्थ में। इनमें से प्रथम परिप्रेक्ष्य में पुरातत्व शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ ग्रहण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक कालों के पुरावशेषों को सम्मिलित किया गया है। इस दृष्टि से पुरातत्व के अंतर्गत पाषाण काल के उपकरणों को लेकर आजकल के काल पात्रों तक का समावेश किया जा सकता है। डेनियल की अन्य परिभाषा के अनुसार पुरातत्व की परिधि में लिपि ज्ञान के पूर्व के काल में से संबंधित पुरावशेषों मात्र का ही अध्ययन आता है। पुरातत्व की यह परिभाषा अपेक्षाकृत संकुचित कही जा सकती है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईसा के लगभग 3000 वर्षों पूर्व लेखन कला का सर्वप्रथम विकास संभवतः सुमेरिया में हुआ था। इस प्रकार मानव इतिहास का बहुत बड़ा काल लिपि ज्ञान से रहित और उसके विकास के पूर्व का है। लिपि का विकास हो जाने पर भी आरंभ में इसका प्रचलन केवल दजला, फरात, नील तथा सिंधु और वांगहो नदियों की उपत्यकाओं के क्षेत्रों तक ही सीमित था। यही नहीं, इन क्षेत्रों में भी लिपि का प्रयोग केवल कतिपय पृष्ठ संख्या 4 विशिष्ट कार्यों के लिए होता था। अत्यंत सुदीर्घ काल तक शेष विश्व के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ बने रहे। ऐसे लोगों के अस्तित्व की जानकारी एकमात्र पुरातत्व के द्वारा ही हो सकती है। कालांतर में लिपि का अधिकांश क्षेत्रों में प्रसार हो जाने के बावजूद पुरातत्व का महत्व कम नहीं होता है। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में आजकल की भांति लिपि का विभिन्न कार्यों के लिए व्यापक प्रचलन नहीं था। समाज में केवल गिने चुने लोग ही साक्षर होते थे। अधिकांश कार्य व्यापार अलिखित ही घटित होते थे, इसलिए लिपि ज्ञान वाले कालों के लिए भी पुरातत्व की उपयोगिता कम नहीं होती है। लिपि ज्ञान वाले कालों के मानव इतिहास के अनेक पक्षों के विषय में जानकारी केवल भौतिक पुरावशेषों के द्वारा ही होती है। इस प्रकार पुरातत्व उन विषयों में सबसे महत्वपूर्ण है जो मानव से संबंधित ऐतिहासिक ज्ञान को लिखित दस्तावेजों की सीमा से परे बढ़ाता है। 20वीं शताब्दी विश्व में सर्वत्र राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचों में परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय रही है। सांस्कृतिक मानदंड तथा दृष्टिकोण में भी बड़ी तेजी से बदलाव हुए हैं और हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से अन्य विषयों की ही भांति पुरातत्व भी अछूता नहीं रहा है। बदली हुई इन परिस्थितियों के आलोक में पुरातत्व की पुरानी परिभाषाओं में भी संशोधन एवं परिवर्धन आवश्यक प्रतीत होने लगे हैं। पुरातत्व की पारंपरिक परिभाषा के अनुसार इसके अंतर्गत प्रधानतः मानवकृत भौतिक पुरावशेषों और पुरानिधियों का अध्ययन अतीत के इतिहास को समझने के लिए किया जाता है। चाहे ऐसे पुरावशेष पाषाण काल के पत्थर के बने हुए उपकरण एवं औजार हो या मिट्टी के बने हुए बर्तनों के टुकड़े हों या मानव द्वारा बनाई गई झोपड़ी के मात्र स्तंभ गर्त पोस्ट होल्स हों अथवा वास्तुकला तथा तक्षण कला के से संबंधित भव्य एवं महान कलाकृतियां हों। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि पुरातात्विक अध्ययन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री भी सम्मिलित की जाती है जिसका निर्माता मानव स्वयं नहीं था। उदाहरणार्थ मानव के जीवाश्म फोसिल्स एवं मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटन्स और इन्हीं के समकालीन जीव जंतुओं तथा पादपों के जीवाश्म आदि। इन उपयुक्त चीजों का मानव अतीत को समझने के लिए बहुत अधिक महत्व है। ऐसी स्थिति में केवल मानवकृत भौतिक पुरावशेषों के द्वारा मानव अतीत के अध्ययन को ही पुरातत्व की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पुरातत्व से तात्पर्य एक ऐसे विषय से है जो एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम क्रोनोलॉजी एवं पारिस्थितिकी इकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनिश्चित देश स्पेस तथा काल टाइम के संदर्भ में भौतिक पुरावशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। पृष्ठ संख्या 5 पुरातत्व का अध्ययन क्षेत्र इतिहास मानव अतीत के क्रियाकलापों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। पुरातत्व इस व्याख्या में अत्यंत सार्थक एवं सक्रिय भूमिका अदा करता है। पुरातत्व प्रमुख रूप से भौतिक पुरावशेषों फिजिकल रिमेन्स के माध्यम से मानव इतिहास की संरचना में संलग्न है। पुरातात्विक साक्ष्यों की सहायता से मानव का सांस्कृतिक इतिहास आसानी से लिखा जा सकता है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में पुरातत्व का अस्तित्व विवादपूर्ण है। विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पुरातत्व का अध्ययन अध्यापन इतिहास की एक शाखा के रूप में किया जाता है। भारत में प्रायः प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन होता है। भारत के कतिपय विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र विषय के रूप में पुरातत्व का अध्ययन प्रारंभ हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरातत्व को नृतत्व विज्ञान की एक शाखा माना जाता है। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय न मानने वाले विद्वानों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं। पुरातत्व के पास अपने केवल कुछ आंकड़े तथा अध्ययन संबंधी कुछ विधियां और विचारधाराएं हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भूतत्व विज्ञान नृतत्व विज्ञान तथा इतिहास आदि को से ग्रहण की गई है। स्टुअर्ट पिकर्ट पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा मात्र मानते हैं। ब्रिटेन की पुरातत्व संबंधी प्रसिद्ध संस्था प्रीहिस्टोरिक सोसाइटी के सन 1963 ईस्वी के अपने अध्यक्षीय भाषण में पिगट ने दुख प्रकट करते हुए कहा है कि बहुत से विद्वान पुरातत्व प्रागैतिहासिक को इस स्वतंत्र एवं गंभीर बौद्धिक विषय कदापि नहीं मानते हैं। वे इसे मानव अतीत के इतिहास निर्माण की मात्र एक ऐसी विधि समझते हैं जिसमें गंभीर बौद्धिक प्रक्रिया की जटिलताओं की सहज रूप से उपेक्षा की जा सकती है। कुछ समय पूर्व जब विद्वानों ने पुरातत्व को साक्ष्य संकलन की एक प्रणाली मात्र माना था उस समय इस कथन का कुछ औचित्य था, लेकिन 20वीं शताब्दी के स्तर के 70 एवं 80 के पिछले दो दशकों में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य संकलन करने की विधियों एवं प्राविधियों के पूर्व विकास होने के साथ ही साथ साक्ष्यों की व्याख्या में संबंधित सिद्धांतों पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा है। पुरातत्व मानवकृत पुराने अवशेषों को खोज निकालने का केवल एक तरीका ही नहीं है, बल्कि मानव की संपूर्ण भौतिक उपलब्धियों को एक सही परिप्रेक्ष्य में रखकर अध्ययन की एक जटिल एवं गंभीर भौतिक प्रक्रिया भी है। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने में जिन विद्वानों के नामों का स्मरण श्रद्धा एवं आदर के साथ पृष्ठ संख्या 6 किया जाता है, उनमें से मॉर्टिमर व्हीलर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुरातत्व के संबंध में अनर्गल विदग्धा लाभ करने वालों को व्हीलर ने समुचित उत्तर दिया है। पुरातत्व के विषय में प्रचलित भ्रांत धारणाओं का निवारण करते हुए व्हीलर ने लिखा है कि पुरातत्व प्रधानतः तथ्यों की खोज करने वाला विषय है, किंतु अमेरिकन लेखक वॉल्टर टाइलर का यह कथन है कि पुरातत्व मानव के सांस्कृतिक इतिहास के विषय में साक्ष्य संकलन की एक विशिष्ट प्रणाली विधि एवं तकनीकों की समूह मात्र है बिल्कुल गलत है। मुझे इस प्रकार के मत को कोरी बकवास मात्र कहकर भर्त्सना करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है। यह सच है कि पुरावेद प्रधान रूपे तथ्यों का खोज करता है, किंतु उसके ये तथ्य मानव अतीत की भौतिक उपलब्धियों के मूर्त विवरण है। इस रूप में वह मानवतावादी है। संयत परिकल्पना के माध्यम से वह इस भौतिक सामग्री को सजीव बनाता है। इस अर्थ में पुरावेद मानव की खोज में संलग्न है। इस प्रकार पुरातत्व का पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व है। पुरातत्व किसी अन्य विषय का मुखापेक्षी नहीं है। पुरावेद क्या करते हैं एवं अपने कार्य को किस प्रकार से करते हैं, इन विचारों में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुके हैं। यही नहीं, पुराविदों को कौन सा कार्य किस प्रकार करना चाहिए, इस बात में अत्यधिक परिवर्तन एवं बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ सैद्धांतिक धारणाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। अन्य विषयों की ही भांति ज्ञान के लिए पुरातत्व का भी अध्ययन किया जा सकता है। पुरातत्व के प्रसिद्ध पुरोधा J.G.D. Clark ने लिखा है कि पुरातत्व के अध्ययन के औचित्य को सिद्ध करने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। विश्व ब्रह्मांड के स्वरूप की खोज एवं कला तथा दर्शन के अध्ययन की ही भांति यह विषय भी मानव के ज्ञान के आयाम की को व्यापक बनाता है। आज विश्व में सर्वत्र विखराव एवं अलगाव की प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। मानवता को समझाने की पुरातत्व एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है। वर्तमान ही नहीं अपितु विगत मानव समुदायों के लोकाचारों, यूजेस, इतिहास एवं परंपरा और ट्रेडिशन के प्रति आदर भाव को विकसित करने में सहायक है। पृष्ठ संख्या 7। पुरावेद पृथ्वी के आंचल में छिपे तथा उजाड़ एवं वीरान टीलों में दबे पड़े हुए मानव के भौतिक पुरावशेषों में पुनः जीवन के स्पंदन का संचार करता है। पुरावेद के इस कार्य को उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। जब हम यह कहते हैं कि पुरावेद मानव के अतीत काल के भौतिक पुरावशेषों के विषय में अनुसंधान करता है, तब हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवशेष शताब्दियों नहीं बल्कि सहस्त्राब्दियों के प्राकृतिक विनाश और सड़ने गलने से बचे हुए प्रमाण हैं। मानवकृत टिकाऊ चीजों के अवशेष ही बच पाते हैं। यही कारण है कि मानवकृत चीजों के नमूनों के रूप में पाषाण एवं धातु की बनी हुई चीजें अथवा मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े ही प्रायः उपलब्ध होते हैं। मांस शीघ्र ही सड़ जाने वाली वस्तु है। हड्डियां अपेक्षाकृत टिकाऊ होती हैं, विशेषकर जीवाश्मों के रूप में, लेकिन ये हमेशा अश्मीभूत माइनरलाइज्ड अवस्था में नहीं मिलती हैं। वस्त्र, रस्सी, जाल, समूर एवं चमड़ा आदि अपवादात्मक विशिष्ट परिस्थितियों में ही सुरक्षित रह पाते हैं। समूर जैसे मिस्र और एरिजोना की शुष्क जलवायु में या तो फिर उत्तरी यूरोप की अनेक झील तलों एवं दलदलों पीट बॉक्स में जहां जीवाणुओं का प्रवेश संभव नहीं है, कभी कभी पुरावेद किसी परोक्ष संकेत के आधार पर भी कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे किसी स्थल के उत्खनन में यदि कई स्तंभ गर्त एक सुनिश्चित क्रम विन्यास से मिलते हैं, तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भवन लकड़ी के स्तंभों की सहायता से बनाया गया था। मानव के अतीत का सारा अध्ययन तथा अनुसंधान लिखित एवं अलिखित साक्ष्यों की व्याख्या पर आधारित है। इसी व्याख्या के आधार पर कुछ अनुमान परक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक साक्ष्य की अपनी संभावनाएं, पोटेंशियलिटीज एंड सीमाएं तथा सीमाएं लिमिटेशंस होती हैं। पुराविदों द्वारा प्रयुक्त साक्ष्यों की भी अपनी सीमाएं एवं त्रुटियां हैं। पुरातत्व अज्ञात नामा नेमलेस मृत व्यक्तियों के विषय में अध्ययन करता है। इसलिए पुराविदों द्वारा संस्कृतियों के अध्ययन की रूपरेखा में व्यष्टि पर नहीं बल्कि सारा ध्यान समष्टि पर केंद्रित होता है। सामाजिक संगठन जैसे किसी काल विशेष में लोगों के कितनी पत्नियां होती थी, वंशक्रम माँ मातृ सत्तात्मक से चलता था अथवा पिता पितृसत्तात्मक से चलता था, उस समूह या समुदाय के लोग कौन सी भाषा अथवा भाषाएं बोलते थे तथा किस प्रकार के नृत्यों एवं गीतों से अपना मनोरंजन करते थे, मरणोपरांत जीवन के विषय में उनके क्या विचार थे, इन और इन्हीं की तरह के अन्य प्रश्नों का उत्तर मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। इनके लिए पुरातात्विक अन्य विषयों की सहायता लेते हैं।